ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पंद्रहवां अध्याय ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। श्लोक 49।
कामं भवस्वृजिनैर् निरयेषु नस्ताच चेतो लिवद्यदिनुते पदयोरमेत वाचश्च न स्थूलसिवद्यदितेन्द्रिशोभाः पूर्येत ते गुणगुणैर्यदि कर्णरन्ध्रः
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहें, हमारे शब्द आपके कार्यों के कथन से सुंदर बनते रहें, जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दल सुंदर लगने लगते हैं, तथा जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से सदैव पूरित होते रहें, तब तक आप जीवन का जिस किसी भी नारकीय स्थिति में हमें जन्म दे सकते हैं। तात्पर्य। अब चारों मुनि भगवान से अपनी दीनता दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान के दो अन्य भक्तों को शाप देकर उनका अभिमान व्यक्त किया था। जय तथा विजय नामक दो द्वारपाल, जिन्होंने उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने से रोका था, निश्चित रूप से अपराधी थे, किंतु वैष्णव होने के नाते इन चारों मुनियों को क्रोध में आकर उन दोनों को शाप नहीं देना चाहिए था। इस घटना के बाद उन्हें चेत हुआ कि भगवत भक्तों को शाप देकर उन्होंने बुरा किया है, अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि नारकीय अवस्था में भी उनके मन भगवान नारायण के चरण कमलों की सेवा करने से विचलित न हो। जो लोग भगवान के भक्त होते हैं, वे जीवन की किसी भी दशा से भयभीत नहीं होते, बशर्ते कि वे भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहें। भगवान नारायण के भक्तों नारायण परों के बारे में कहा जाता है कि कुतश्चन बिभ्यति, वे नारकीय स्थिति में प्रवेश करने से डरते नहीं, क्योंकि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, अतः उनके लिए स्वर्ग या नरक एक समान होता है। भौतिक जीवन में स्वर्ग तथा नरक दोनों ही एक समान होते हैं, क्योंकि वे भौतिक हैं। इनमें से किसी में भी भगवान की सेवा में लगे रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। अतएव जो लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, वे स्वर्ग तथा नरक में कोई अंतर नहीं देखते। ऐसा तो केवल वे भौतिकवादी देखते हैं, जो एक की अपेक्षा दूसरे को वरीयता देते हैं। इन चारों भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की कि यद्यपि भक्तों को श्राप देने के कारण हम नरक जा सकते हैं, किंतु हम भगवान की सेवा करना न भूलें। भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा तीन प्रकार से की जाती है, मनसा, वाचा तथा कर्मणा। यहाँ मुनिगण कहते हैं कि उनकी वाणी सदैव परमेश्वर के गुणगान में लगी रहे। कोई कितने ही अलंकारमयी या नियंत्रित व्याकरण सम्मत भाषा क्यों न बोले, किंतु यदि उसके शब्द भगवान की सेवा में नहीं लगते तो उसमें न तो कोई स्वाद होता है और न ही और न वह किसी लाभ की होती है। यहाँ पर तुलसी दलों का दृष्टांत दिया गया है। तुलसी दल औषधीय या जीवाणुनाशक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। ये पवित्र माने जाते हैं और भगवान के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं। तुलसी दल में असंख्य सद्गुण हैं, किंतु यदि इन्हें भगवान के चरण कमलों पर अर्पित न किया जाता तो तुलसी का इतना महत्व न होता। इसी तरह कोई व्यक्ति अलंकार या व्याकरण की दृष्टि से कितने ही सुंदर ढंग से क्यों न बोले और भौतिकवादी श्रोता उसकी अत्यधिक प्रशंसा क्यों न करें, किंतु यदि उसके शब्द भगवान की सेवा में अर्पित नहीं होते तो वे व्यर्थ हैं। कान के छेद बहुत छोटे होते हैं और वे किसी नगण्य ध्वनि से पूरित हो सकते हैं, अतः वे भगवान की महिमा जैसी महान ध्वनि को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि कान के छेद आकाश की तरह हैं। जिस तरह आकाश कभी भी पूरित नहीं होता, उसी तरह कान की विशेषता है कि कोई चाहे जितनी तरह की ध्वनियां उड़ेलता जाए फिर भी कान अधिकाधिक ध्वनियों को ग्रहण कर सकता है। यदि भक्त को निरंतर भगवान की महिमा सुनने का अवसर प्राप्त होता रहे तो वह नरक जाने से भयभीत नहीं होता। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का यही लाभ है। कोई किसी भी स्थिति में क्यों न हो, ईश्वर उसे हरे कृष्ण कीर्तन करने का अधिकार देता है। यदि जीवन की किसी भी स्थिति में मनुष्य कीर्तन करता रहे तो वह कभी भी दुखी नहीं होगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ चार कुमार को ये अनुभूति हुई है कि उन्होंने जो जय और विजय नामक द्वारपालों को श्राप दिया है असुर योनि में जन्म लेने के लिए भौतिक संसार में, ये उन्होंने बहुत गलत किया है। और जब ये उनको अनुभव हुआ तो बहुत बुरा लगा। हालांकि दो भक्त जय और विजय उन्होंने गलत काम किया था, उन्हें चार कुमारों को रोकना नहीं चाहिए था। भक्त होने के नाते ये कार्य उचित नहीं था, लेकिन फिर भी चार कुमारों को भी इस प्रकार से शाप देना उचित नहीं था। और क्योंकि एक चार कुमार वैष्णव बन गए, भगवान के चरण कमलों के तुलसी के पत्तों के सुगंध द्वारा जब उनके नसिकों में प्रवेश किया वो गंध ने, तो तुरंत उनका हृदय परिवर्तित हो गया और वो भक्त बन गए। इसके पहले वो ब्रह्मवादी थे लेकिन अब भक्त बन गए। जब भक्त बन गए तो तुरंत उनको बुरा लगा कि मैंने क्या किया। तो हमारे लिए ये एक सबक है कि भले ही कोई भक्त भी हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करे, लेकिन हमें इसे हृदय से नहीं लेना चाहिए, हमें भूल जाना चाहिए। एक संत ने कहा है, कई चीजें इस संसार में भूलने लायक हैं और कई चीजें याद रखने लायक हैं। कोई दूसरा अगर हमारे साथ बुरा करे तो हमें क्या करना चाहिए? भूल जाना चाहिए। कोई दूसरा अगर हमारे साथ कोई अच्छा करे तो क्या करना चाहिए? हमेशा याद रखना चाहिए। अगर हम किसी के प्रति कोई अच्छा करते हैं तो क्या करना चाहिए? भूल जाना चाहिए। अगर हम किसी के प्रति बुरा करते हैं तो क्या करना चाहिए? याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर कोई वैष्णव भी, वैष्णव क्यों, कोई साधारण व्यक्ति भी हमारे प्रति कोई बुरा व्यवहार करे, हमें इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं स्वीकार लेना चाहिए, इसको भूल जाना चाहिए। और खास करके अगर वो व्यक्ति वैष्णव हो तो बिल्कुल ही गहराई से नहीं लेना चाहिए इसको। यहां तक कि हमें समझना चाहिए कि ये कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण इनके माध्यम से बोल रहे हैं, हमारी भलाई के लिए बोल रहे हैं, अवश्य इसमें हमारे लिए कोई उपदेश है। चाहे भगवान हमें नम्र बनाना चाहते हैं, हमारे अहंकार को चूर कराना चाहते हैं, चाहे कोई और शिक्षा देना चाहते हैं भगवान, तो इस प्रकार से हमें अच्छे ढंग से इसे स्वीकार करना चाहिए, बुराई कभी इसमें नहीं देखनी चाहिए। और बुरा सोचने के बजाय मन ही मन, कभी कभी वाचक ढंग से भी उसका धन्यवाद करना चाहिए। ये हमारी परीक्षा है। हम भागवत क्लास में बैठते हैं, बोलते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं, अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, अन्य प्रकार की सेवा करते हैं, लेकिन इन सब चीजों की परीक्षा व्यवहार में ही होती है। जब हमारा व्यवहार होता है, बुरा व्यवहार हो जाता है, तो फिर हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं। जब व्यवहार प्रामाणिक होता है तो हम परीक्षा में पास हो जाते हैं। विचार आचार और प्रचार, ये तीन चीजें हैं। अगर हमारे विचार अच्छे हो तो हमारा आचार अच्छा हो सकता है, आचार अच्छा हो तो फिर प्रचार हो सकता है। लेकिन सबसे पहली बात है विचार। विचार का मतलब सही ज्ञान होना चाहिए, सही मनोवृत्ति होनी चाहिए, सही भावना होनी चाहिए, सही चेतना होनी चाहिए। जब ये होगा तो हम सही ढंग से आचार कर पाएंगे। अगर हमारी मनोवृत्ति, चेतना, भावना, एटीट्यूड जो बोलते हैं, वो अगर सही नहीं है भक्ति के प्रति, कृष्ण के प्रति, अन्य भक्तों के प्रति, जन साधारण के प्रति, तब हमारा आचार कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। और आचार ठीक नहीं होगा तो प्रचार कैसे होगा? और प्रचार करेंगे भी तो उस प्रचार में शक्ति नहीं होगी। इसलिए सबसे मूल वस्तु है कि हमें सही प्रकार के विचार की अनुशीलना करने का प्रयास करना चाहिए। और हमेशा ये सोचना चाहिए कि प्रत्येक वैष्णव भगवान का बहुत प्रिय होता है, इसलिए वैष्णव के प्रति कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। हमारे दैनिक व्यवहार में भी हमें भगवान ऐसे कई परिस्थितियों में डालेंगे जहां भक्तों के प्रति अपराध करने का मौका भगवान देते हैं हमारी परीक्षा लेने के लिए। देखते हैं कि हम कितना सीखे हैं, हम भक्ति मार्ग में कितना आगे बढ़ चुके हैं, क्या सबक हमने अब तक सीखा है, क्या वैष्णव को हम वैष्णव मानते हैं कि वैष्णव को कुछ और मानते हैं, क्या हम सोचते हैं कि ये वैष्णव हमारे नाक में दम बैठकर होकर बैठ गया है, या ये वैष्णव हमारे लिए कितना कष्ट दे रहा है, तो भगवान देखते हैं। तो भगवान हमें कभी कभी श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, भगवान हमें अक्सर ऐसे स्थितियों में डालते हैं जहां हमारे सहनशीलता के सीमा तक हमें पहुंचा देते हैं भगवान, हमारे अच्छे गुणों के सीमा तक पहुंचा देते हैं, तब हमें परीक्षा देते हैं। परीक्षा का मतलब है कि सीमा तक पहुंचकर परीक्षा देना। दसवीं कक्षा में कोई विद्यार्थी हो, दूसरी कक्षा की परीक्षा दी जाए तो इसमें क्या बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दसवीं कक्षा में दसवीं कक्षा का पेपर दिया जाए, वो भी कठिन पेपर, तो फिर विद्यार्थी की असली परीक्षा होती है। और अगर उसमें वो पास कर जाए तो फिर उसका क्रेडिट होता है, वास्तव में उसे पुरस्कार मिलता है। तो इसी प्रकार से साधारण सब कुछ ठीक चल रहा है, उस समय अगर हम भगवान के भक्तों के साथ प्रेम से रहते हैं, प्रेम से बात करते हैं, गले लगाते हैं एक दूसरों को, उनका सम्मान देते हैं, आदर सत्कार करते हैं, तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब परिस्थिति बुरी है, या जब कोई वाद हो जाता है, या कोई मतभेद हो जाता है, या इस प्रकार की कोई घटना हो जाती है, तो उस प्रकार हमारा व्यवहार कैसे होता है, उस समय हमारा व्यवहार कैसे होता है, ये असली बात है। इसलिए हमें हमेशा ये मन में रखना चाहिए कि हम किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। कभी कभी एक परिवार में भी सारे भक्त वैष्णव होते हैं, और क्योंकि परिवार में होते हैं इसलिए एक दूसरे को जो है जैसे पहले समझते थे अपने आप को, तो वैसे ही साधारण समझते हैं, और व्यवहार ऐसे बुरे हो जाते हैं कभी कभी, तो वैसे नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से ये बड़े भक्तों के परिवार में, कुटुंब में भी हमें बहुत ध्यान से रहना चाहिए, बहुत ही सावधानी से हमें रहना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ये बहुत हमें भेंट दिए हैं, बहुत बड़े बड़े भेंट हमें दिए हैं। उन्होंने हरि नाम का भेंट दिया है, उन्होंने अर्च विग्रह की पूजा और सेवन का अवसर, इसका भेंट दिया है। उन्होंने ऐसे सुंदर सुंदर ग्रंथ श्रीमद् भागवत और भगवद गीता टीका सहित इसका भेंट दिया है, और इतने कई चीजें हैं, कृष्ण प्रसाद का भेंट दिया है, बहुत सारी चीजें, एक संस्कृति का भेंट दिया है, जिस संस्कृति को हम जानते थे लेकिन अच्छी तरह से नहीं, ऐसे संस्कृति का भेंट दिया है। लेकिन जैसे हम दो तीन दिन पहले भक्तों से चर्चा कर रहे थे कि सबसे बड़ी भेंट जो प्रभुपाद जी ने हमें दी है वो है भक्तों के संग का भेंट, क्योंकि भक्तों का संग अगर नहीं होगा तो हम अन्य सारे भेंट जो हैं इनका सही तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे। भक्तों का संग एक ऐसा भेंट है जिसमें रहकर हम ये सारे अन्य चीजें अच्छी तरह से कर सकेंगे। अगर भक्तों का संग हमारे पास नहीं होगा, हरि नाम का जाप नहीं कर पाएंगे, भगवान की अर्च विग्रह की पूजा नहीं कर पाएंगे, और कुछ भी नहीं कर पाएंगे, भक्ति के सारे अन्य अंग हैं उनको हम नहीं कर पाएंगे, ये निश्चित बात है। माया बहुत प्रबल है, तो ये प्रभुपाद जी की सबसे बड़ी भेंट है। और अगर इस भेंट को हमने सही ढंग से स्वीकार नहीं किया है तो फिर ये हमारा दुर्भाग्य होगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, इसका मतलब है कि एक भेंट में दिए गए घोड़े को मुंह में देखना। पुराने जमाने में कहा जाता था कि लोग जो भेंट देते थे, जैसे गाय घोड़ा इस प्रकार से भेंट देते थे, आजकल अलग अलग प्रकार के भेंट देते हैं लोग, कोई विदेश का आइटम देते हैं, कोई क्या देते हैं, लेकिन उस जमाने में कोई पशु भेंट में देते थे। और अगर किसी व्यक्ति ने हमें एक घोड़ा भेंट में दिया, भेंट दे दिया, तो अगर हम जाके घोड़े का मुंह देखें कि कितने दांत हैं, इसका मतलब कि हम देखना चाहते हैं कि घोड़ा बुढ़ा है या जवान है, मतलब दांत नहीं है तो समझ सकते हैं कि बुढ़ा है, तो ये उचित नहीं है। जब उसने भेंट में दिया है, हमें स्वीकार करना चाहिए। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भेंट में दिया लेकिन बुढ़ा घोड़ा दे दिया, अभी क्या है, देना था तो जवान घोड़ा तो दे दिया होता कम से कम। मतलब भेंट तो लिया लेकिन सही ढंग से कृतज्ञता से हमें नहीं लिया, लिया लेकिन वो भी शिकायत करते हुए, अरे दिया तो कैसे दिया, है ना। तो भेंट को स्वीकार करना है तो हमें बहुत ही अच्छे ढंग से, कृतज्ञता से, धन्यवाद देते हुए, उदार हृदय से हमें स्वीकार करना चाहिए। जिस उदार हृदय से देने वाले ने दिया है, उस वैसे ही उदार हृदय से हमें स्वीकार करना चाहिए। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने कितने उदार हृदय से हमें ये भेंट दिया है, भक्तों के संग का भेंट। और अगर हम इस भेंट को कहें कि अरे भक्तों का संग तो दिया है, लेकिन कैसे भक्त हैं, कैसे भक्तों का संग दिया, देखो ये भक्त देखो, अरे वो भक्त देखो, अरे ये भक्त देखो, इसकी हरकतें पे देखो, ये हमारे साथ कैसे व्यवहार करता है, वो कैसे देखता है, तो वैसे ही हो गया कि जैसे वो भक्त जो है वो आदमी घोड़े के मुख में देखकर बोल रहा है कि घोड़ा तो दिया लेकिन कैसे घोड़ा दे दिया। तो इसी प्रकार से हमें भक्तों के संग के लिए प्रभुपाद जी से बहुत आभारी होना चाहिए कि प्रत्येक वैष्णव, प्रत्येक भक्त एक रत्न है, अनमोल मणि है। हम पहचान नहीं सकते हैं कौन भक्त क्या है। हो सकता है यहां जो भक्त बैठे हैं एक कोई ग्वाल बाल है, हो सकता है और एक भक्त कोई भगवान के धाम में गोपी हो सकता है कि और एक भक्त कोई भगवान के धाम में भगवान के बांसुरी के ऊपर कोई मणि हो। क्या पता कौन क्या है भगवान के धाम में। इस वक्त तो हम इस स्थान को नहीं जान सकते। जब वैष्णव की कृपा, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा होगी, जब हमारी स्वरूप सिद्धि हो जाएगी, जब हम जान पाएंगे कि हमारा स्वरूप क्या है भगवान के धाम में, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त हम शारीरिक देह, शारीरिक बुद्धि से देख रहे हैं कि ये तो भक्त ऐसा है, ये भक्त वैसा है। तो हमें सोचना चाहिए कि आगे चलकर ये भक्त कौन हो सकता है, क्या पता। खबरदार रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। भक्त जीव गोस्वामी पाद अपने शत संदर्भों में बताते हैं कि भक्ति के नियमों का पालन करना, भक्ति करना बहुत आसान चीज है। इससे आसान चीज कोई भी संसार में नहीं है। भगवान का नाम का जाप करना, विग्रह की पूजा करना बहुत आसान है, लेकिन भक्ति में फिर भी हम प्रगति नहीं करते। क्यों? क्योंकि वैष्णव अपराध से बचना उतना ही ज्यादा मुश्किल है जितना भक्ति करना आसान है। देखिए कितनी सुंदर बात बताते हैं जीव गोस्वामी पाद। जितना आसान भक्ति करना है उतना ही ज्यादा कठिन भगवान के भक्तों के प्रति अपराध नहीं से बचना है। तो जो भी कठिनाइयां हमारे भक्ति में हम अनुभव करते हैं वो वैष्णव अपराध के कारण होते हैं, वैष्णव के प्रति बुरा व्यवहार करने से होते हैं। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से भक्तों के संग में रहना चाहिए। थोड़े दिन पहले एक भक्त हमें बहुत आश्चर्य की बात बता रहे थे, जो हम भी सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वो कह रहे थे कि भक्ति विनोद ठाकुर में उनके ग्रंथ में कहा है कि वैष्णव को के प्रति अपराध करना तो अपराध है ही, लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति के प्रति अपराध किया जो अब वैष्णव नहीं है लेकिन भविष्य में जाकर वो वैष्णव बनेगा, तो ये भी वैष्णव अपराध माना जाता है। हमने सोचा अरे बाप रे ये क्या हो गया। तो सोचिए कि भगवान वैष्णव अपराध कितना सीरियसली लेते हैं, कितनी बड़ी बात है भगवान के दृष्टि में। कोई माता पिता के बारे में आप कुछ बोलेंगे तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उनके बच्चों के बारे में बोल के देखिए, आग के समान हो जाते हैं, अग्नि की तरह आके आपसे झगड़ा करेंगे। तो उसी प्रकार से कृष्ण के प्रति अपराध कीजिए तो कृष्ण इतना गंभीरता से नहीं लेते। जैसे छोटा बच्चा अपने माँ को थप्पड़ मारता है, माँ सीरियसली नहीं लेती है, बच्चा है, मेरा ही बच्चा है। तो कृष्ण के प्रति हम अपराध करते हैं तो कृष्ण इतना गंभीरता से नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कृष्ण के भक्त के बारे में कुछ बोलेंगे तो कृष्ण बड़े नाराज हो जाते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं कृष्ण भगवान। तो इसीलिए हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है तो कृष्ण के भक्तों को प्रसन्न करना चाहिए, कृष्ण के भक्तों के संग में बहुत प्रेम से रहना चाहिए। ये हमारे सामने चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज। सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि हम 16 माला करें रोज, या हम भागवत रोज पढ़ें। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि भक्तों के संग में प्रेम से कैसे रहें और भक्तों को अपना प्रभु मानकर कैसे रहें, अपने को दास मानकर दूसरों को प्रभु मानकर हम कैसे रहें, दूसरों की सेवा कैसे करें हम। दासोस में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कल तिरुभाव उनकी तिरुभाव तिथि थी। जब भी कोई उनके पास आते थे कहते थे दासोस में मैं आपका दास हूं, सेवा का अपराध दीजिए। तो इस भावना का अनुशीलन करना बहुत कठिन है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है, ये करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और भगवान हमें ये अवसर दे रहे हैं। आप में से जो कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि कॉलेज में जब विज्ञान पढ़ते हैं दो चीजें होते हैं, एक होता है ज्ञान मतलब थियरी जो किताब से पढ़ाते हैं, और दूसरा होता है विज्ञान मतलब जो पुस्तकों में पढ़ाया जाता है उसे लेबोरेटरी में जाकर वो वगैरह कोई संशोधन करते, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें से उसमें डालकर केमिकल निकालते हैं, वो क्या करते हैं, और फिर उसी ज्ञान को सिद्ध कर देते हैं लेबोरेटरी में, प्रैक्टिकल चीज। तो उसी प्रकार से हम रोज भागवत पाठ करते हैं, गीता पाठ करते हैं, जाप करते हैं, सब कुछ सेवा करते हैं, और फिर इसका प्रैक्टिकल पार्ट जो है विज्ञान, ये लेबोरेटरी क्या है, ये लेबोरेटरी है भक्तों का संग, जिसमें जो हमने श्रवण किया है गीता भागवत से उसको हमारे जीवन में उतारने के लिए प्रैक्टिकल दृष्टि से ये एक मौका दिया जाता है। हम सुनते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसे भक्तों ने, महान भक्तों ने ऐसे किया, परीक्षित महाराज ने ऐसे किया, चार कुमारों ने ऐसे किया, ये थियरी है, ज्ञान है, सब हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी हमारे जीवन में इन चीजों को उतारने का मौका भगवान दे रहे हैं। कब दे रहे हैं? हर मौके, हर क्षण पर ये मौका हमें भगवान दे रहे हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि स्कूल कॉलेज में तो लेबोरेटरी क्या है, दिन में एक घंटा हो सकता है या हफ्ते में तीन चार बार, लेकिन हमारी लेबोरेटरी जो है हर क्षण है, 24 घंटे हमारी लेबोरेटरी खुली रहती है। हर क्षण कैसे हम भक्तों के प्रति व्यवहार करते हैं, कैसे हम प्रेम से भगवान के भक्तों के संग में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, इसीलिए हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है। अगर हम भक्तों के संग में ठीक से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, भक्तों की सेवा करके रहेंगे, उनके दास के प्रति रहेंगे, हरिनाम बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके लिए भी चेष्टा करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस हम भगवान भक्तों की सेवा करते रहें और जब जाप आ जाएगा तो हम छोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं है। साधना के लिए भी, अन्य सेवा के लिए भी चेष्टा करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए, तीव्र प्रयास करना चाहिए, ये तो है ही। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भक्तों के प्रति व्यवहार हमारा अच्छा नहीं हुआ, भक्तों की सेवा भावना से हम नहीं रहे, तो हरिनाम में रस नहीं आएगा, हरिनाम नहीं कर पाएंगे, हम हरिनाम को छोड़कर हम अन्य कोई कार्य कर देंगे। इसीलिए यहां मंदिर में देखते हैं कितना अच्छा लगता है, सब भक्त लोग बैठते हैं, किसी भक्त को नींद आती है लेकिन फिर भी प्रयास करता है, और एक भक्त को नींद आती है तो चल के करता है, लेकिन हरिनाम नहीं छोड़ते हैं, पूर्ण प्रयास। तो ये प्रयास देखकर भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे ही प्रयास होना चाहिए सभी का, भले ही बाधाएं आए बीच में, लेकिन हम करते रहें करते रहें। लेकिन हम देखते हैं कि कई जगह में कई भक्त होते हैं जो एक ऐसे अभ्यास का अनुशीलन नहीं, ऐसे अभ्यास न करने के कारण अभी एक समय 16 माला नहीं कर पाते हैं, दो माला भी नहीं कर पाते हैं। दो माला करने के बाद कोई बातचीत करना पड़ता है, कोई बाहर जाके दूसरा कोई कार्य करना पड़ता है, इधर उधर कुछ और चीज करना पड़ता है, क्योंकि रस नहीं लग रहा है हरि नाम में। तो हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम भक्तों के संग में प्रेम से रहकर हरिनाम का जाप बहुत ध्यान से करने का प्रयास करें, भरे ध्यान लगे न लगे वो भगवान के हाथ में है, लेकिन हमारा उद्देश्य है, हमारा कार्य है ध्यान से प्रयास करना। ऐसा करेंगे तो भगवान रस देंगे हमारे जीवन में, और जब रस मिल गया तो फिर और क्या आवश्यक है जीवन में, एक बार ये भक्ति रस हमारे हृदय में आ गया, प्रवेश कर लिया, तो फिर हमारा जीवन सफल हो गया। ये है भक्ति, जिस रस के लिए हम सब, हमने गलती कर ली है, हम क्षमा चाहते हैं। इस गलती के लिए आप हमें भले ही नरक में भी भेजें, हम तैयार हैं, लेकिन साथ साथ एक वरदान हमें दीजिए कि नरक में जाने के बाद में भी आपके चरण कमलों को हम भूले नहीं, आपके प्रेममयी सेवा का रस हम खोना नहीं चाहते हैं कभी भी। ये एक वरदान हमें भेज दीजिए, और बाकी जहां भी आप भेजना चाहते हैं आप भेज दीजिए। इसलिए जब महाराज चित्रकेतु ने के प्रतीक जब महाराज चित्रकेतु ने शिवजी के प्रतीक एक वो हंसे और माता पार्वती को क्रोध आया और उन्होंने शाप दिया और चित्रकेतु राजा ने स्वीकार किया, उस समय शिवजी ने कहा, इसका इनका व्यवहार देखकर इतने खुश हुए शिवजी कि राजा चित्रकेतु ने बहुत ही नम्रता से स्वीकार किया। उस समय शिवजी ने चित्रकेतु राजा और सारे वैष्णवों का गुणगान किया और वो कहने लगे, नारायण परहा सर्वे न कुटश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। वो कहने लगे कि हे देवी, ये देखो कि वैष्णव कितने महान होते हैं। जो नारायण परा सर्वे, परा जो नारायण परा होते हैं, सर्वे ऐसे सारे जो भक्त होते हैं, न कुतश्चन बिभ्यति, बिभ्यति मतलब भीत, भय, भयभीत होना, न कुतश्चन कभी भी डरते नहीं हैं, स्वर्ग अपवर्ग स्वर्ग में भी नहीं डरते हैं, अपवर्ग मतलब मुक्ति से भी नहीं डरते हैं, नरकेशु नरक में भी नहीं डरते हैं, अपि तुल्यात दर्शिनः इन तीनों अवस्थाओं को समान समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही कार्य करते हैं इन तीनों ही अवस्थाओं में, और वो क्या है? भगवान की प्रेममयी सेवा। तो भगवान के भक्त को ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो नरक में है, पृथ्वी लोक में है, स्वर्ग लोक में है, मुक्त अवस्था में है, भगवान के धाम में है, वो भगवान की सेवा ही तो करने वाला है, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए शिवजी देवी जी को बताते हैं कि देखो हे देवी, तुमने श्राप दे दिया है, ठीक है, और वो असुर योनि में भी जाएगा, ये भी ठीक है, लेकिन असुर योनि में रहते हुए भी भगवान को भूलेंगे नहीं। ये है वैष्णव। इसलिए चार कुमार भी चाहते हैं कि हम ऐसे भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में आप भेजिए, लेकिन आपका, आपकी स्मृति हमेशा हमारे साथ में रहे। इसलिए यहां पे कहते हैं कि हम डरते नहीं हैं, नरक में जाने के लिए भी नहीं डरते हैं, लेकिन आपकी विस्मृति से हम डरते हैं। तो उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज भी श्रीमद् भागवत में भगवान से प्रार्थना करते हैं, नैवो द्विजय परदुरत्यय वैतरण्यस् त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्ताः शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढान। प्रहलाद कहते हैं, न उद्विजे, मैं विचलित नहीं होता हूं, मैं भयभीत नहीं होता हूं, पर दुरत्य वैतरण्यास, वैतरण्य मतलब जो भौतिक संसार और भगवान के धाम के बीच में जो वैतरणी नदी है, वो कहते हैं कि मैं इससे, हम उससे नहीं डरते हैं, जो पार करने के लिए बहुत कठिन है। दुरत्या मतलब मैं भौतिक संसार से मैं नहीं डरता हूं, न उद्विजय, मैं विचलित भी नहीं होता हूं ये भौतिक संसार में रहते हुए। क्यों? त्वत वीर्य गायन महामृत मग्न चित्ता, क्योंकि मेरा चित्त किस चीज में मग्न है? आपके वीर्य के गायन में, आपके कथाओं के गायन में, गायन के अमृत में मेरा चित्त हमेशा मग्न रहता है, इसलिए मुझे भीति नहीं है, ये भौतिक संसार मुझे विचलित नहीं कर सकता है, क्योंकि हमेशा मैं आपका स्मरण कर रहा होता हूं। लेकिन सोचे, मैं शोक करता हूं और हमेशा सोचता हूं, किन के बारे में? सोचे ततो विमुख चेतस, जिनकी चेतना विमुख हो गई है आपके प्रति, जिन्होंने आपके प्रति पीठ दिखा लिया है, जो विस्मृति में है, उनके प्रति मैं शोक कर रहा हूँ। शोचेत तो विमुख चेत स, क्यों भूल गए हैं वो लोग, क्यों विमुख हो गए हैं आपके प्रति। इंद्रियार्थ, क्योंकि अपने इंद्रियों की वो इंद्रियों का स्वार्थ जो होता है वो इंद्र को तृप्त करना चाहते हैं, और इंद्रियों को तृप्त करने से वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं, माया सुखाय, चपल सुख, ये क्षणिक लव मात्र जो तथाकथित सुख है इसके लिए वो इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, नहीं जानते हैं कि ये वास्तव में सुख नहीं है। और इस क्षणिक सुख के लिए क्या करते हैं, भरम उद्वहतो, भारी जो बोझ है अपने कंधे पे ले लेते हैं, विमूढ़ान। ऐसे मूर्ख लोगों के लिए मैं बहुत सोचता हूं, बहुत शोक करता हूं उन लोगों के लिए। तो मुझे खुद के लिए कोई भय नहीं है, भीति नहीं है, आप चाहे मुझे कैसे भी अवस्था में डालिए, लेकिन इन लोगों के लिए मैं सोच रहा हूं। तो ये है वैष्णव के विचार, ये है विचार, विचार आचार प्रचार। तो विचार ऐसे होने चाहिए, अन्य लोगों को कष्ट न हो, अन्य वैष्णवों को कष्ट न हो, हमारे कारण से अन्य वैष्णवों को दुख न हो, उनके शरीर में उनके मन में दुख न हो, हमारे ऊपर कोई दुख न आए, कोई बात नहीं, हमें तो भगवान का नाम लेते रहना है। तो इस प्रकार से भागवत में, गीता में, शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने भी ऐसे ही सिखाया है कि ये हमारी भावना होनी चाहिए और ये हमारा व्यवहार होना चाहिए। आचार विचार ठीक हो जाएगा तो हम अच्छी तरह से प्रचार कर पाएंगे, और प्रचार करके चैतन्य महाप्रभु की वाणी को हम पूरी कर पाएंगे और महाप्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे। तो वही भक्ति रस जिसके लिए हम अनादिकाल से प्रयास कर रहे हैं, इस रस को भी हम हमारे जीवन में चख पाएंगे और हमारे जीवन को हम सफल बना पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न इत्यादि? हाँ जी, प्रश्न है कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं वैष्णवों का, कोई वैष्णव कहता है कि मैं वैष्णवों का, अन्य वैष्णवों का संग नहीं करना चाहता हूं, तो हम क्या कर सकते हैं? वो घर पे कैसे भक्ति कर सकता है? हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कैसे कर सकता है, हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। वो भले नहीं आए लेकिन हमें तो उनके यहां जाना चाहिए। वो हमारे पास नहीं आए तो हम तो उनके पास जा सकते हैं, हम तो उनके पास जाके संग दे सकते हैं ना। वो भले यहां आकर संग न ले लेकिन हम तो जाके संग दे सकते हैं, हम तो जाके उनके साथ उनको प्रेम दे सकते हैं। हमें तो कोई रोक नहीं सकता है वैष्णव के पास जाके प्रेम देने के लिए, तो हमें जाना चाहिए। कोई नहीं आ रहा है तो भक्तों के संग के बिना भक्ति करना मुश्किल है, लेकिन और इसीलिए, क्योंकि वो मुश्किल है इसलिए आपको जाकर संग देना चाहिए। उसकी गलती न देखते हुए कि वो भक्ति में नहीं आ रहा है, हमें अपनी गलती को देखना है कि हम जाकर उसके पास भक्ति में उसे प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। गलती हमारी है कि वो नहीं आना चाहता है। हमारा कार्य है प्रयास करना, हमारा कार्य है प्रयास करना, और फिर बाकी उनके बीच में भगवान के बीच में, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए और बार बार प्रयास करना चाहिए। एक भक्त को बनना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता, लेकिन अगर भक्त बन जाए, भक्त को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें पूरी पूरी चेष्टा करनी चाहिए इसलिए हमें कृपालु होना चाहिए और साथ साथ अच्छी तरह से समझाकर बुझाकर कोशिश करना चाहिए। अगर देखिए प्रेम होता है ना, जहां प्रेम होता है तो बात को समझाना बहुत आसान होता है और लोग समझ भी जाते हैं। जब प्रेम नहीं होता है, जब करुणा नहीं होती है, तो लोगों को समझाना भी हमें मुश्किल हो जाता है और लोगों को समझना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, ऐसे हो सकता है कि लोग हैं जितना भी प्रेम दे करुणा दे वो नहीं समझने वाले, हो सकता है। लेकिन जितना ज्यादा हम प्रेम देंगे करुणा देंगे, वास्तव में लोगों का हृदय परिवर्तित हो सकता है। और ये इतिहास हम ग्रंथों में देखते हैं कैसे कैसे लोगों का परिवर्तन हुआ है। तो जिसने वैष्णव है और जिसने भक्ति का रस का अनुभव किया है, क्या उसका हृदय हम नहीं परिवर्तित कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिकल दृष्टि से जो भी कमियां हैं उसके ऊपर कुछ हमें करना चाहिए। भगवान बुद्धि देंगे, हमें भी देंगे, उनको भी देंगे। गुड़ाकेश प्रभु का प्रश्न है, हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वास्तव में, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल है। उनका प्रश्न है कि जब ठीक है हम वैष्णव के संग में हैं, हम प्रेम से रह सकते हैं, लेकिन जब मैनेजमेंट की बात आती है और ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो उस समय हो ही जाता है कि कोई ना कोई वाद हो जाता है। ये स्वाभाविक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि पहली बात तो ये भौतिक संसार है, दूसरी बात कलयुग है इसके ऊपर, और तीसरी बात हम सब शुद्ध भक्त नहीं है। अभी तक हमारे हृदय में इतने जन्मों से अनर्थ है, हम प्रयास कर रहे हैं सब। तो इन तीन कारणों की वजह से ऐसे मतभेद हो सकते हैं और होंगे भी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो हमें बैकग्राउंड इसका समझना चाहिए कि मतभेद होना कोई बुरी बात नहीं है। भगवान के धाम में भी, कृष्ण लोक में भी, गोलोक वृंदावन में भी मतभेद होता है। एक गोपियों के दो कैंप होते हैं, चंद्रावली का एक कैंप है, राधा रानी का एक कैंप है। हमेशा उनका मतभेद होता है कृष्ण की सेवा कैसे करना। राधा रानी के कैंप में और चंद्रावली के कैंप में झगड़े होते हैं, लेकिन उनका केंद्र क्या है? कृष्ण की सेवा। कभी इस चीज को नहीं भूलते हैं और एक दूसरे के प्रति अपराध नहीं करते। तो उसी प्रकार से हमें चाहिए कि हम हमेशा कृष्ण को, प्रभुपाद को केंद्र में रखें। मतभेद तो होने ही वाले हैं, हम ये कभी सोच नहीं सकते कि मतभेद नहीं होंगे, क्योंकि हम सब व्यक्ति हैं। व्यक्ति मतलब हमारे अलग अलग विचार होते हैं। कोई सोचता है कि मैं कृष्ण की सेवा ऐसे करूंगा, कोई सोचता है कृष्ण की सेवा में वैसे करूंगा। दोनों सही हो सकते हैं और हो भी सकते हैं और होगा भी। कृष्ण लोक में भी इतने सारे अनंत कोटि जीव कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, सब अलग अलग तरीके से कर रहे हैं और सब सही हैं। तो यह भी हो सकता है कि यहां पे हम सब सही हो सकते हैं, हो सकता है कोई गलत है, लेकिन हो सकता है हम सब भी सही हैं। तो इसलिए ऐसे सोचते हो कि मतभेद होंगे, लेकिन मतभेदों को कैसे हमें इनका समाधान करना है, ये हमारे सामने चैलेंज है। मतभेद को रोकें ये हमें नहीं सोचना चाहिए, मतभेद जब आए तब इनका सामना कैसे करना चाहिए, कृष्ण की सेवा इनमें सबसे अच्छी तरह से कैसे हो सके, ये हमें देखना चाहिए। तो वास्तव में मैनेजमेंट में ऐसे वैष्णवों के संग में अच्छा व्यवहार करना बहुत ही कठिन है, लेकिन बार बार हमें भगवान से, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस चैलेंज को हम अच्छी तरह से निभाएं। हमें वो बुद्धि दीजिए, हमें वो शक्ति दीजिए कि हम वास्तव में इस चीज को कर पाए। लेकिन देखिए, जब मैनेजमेंट की बात आती है तो हम लोग केवल मैनेजमेंट तो नहीं कर रहे हैं। मैनेजमेंट तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, बाकी समय तो हम जाप करते हैं तो मैनेजमेंट नहीं है, हम भागवत पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, सेवा अन्य प्रकार की करते हैं, वो तो मैनेजमेंट नहीं है। आपस में हम प्रसाद लेते हैं, परस्पर संग करते हैं, वो तो मैनेजमेंट नहीं है। तो हमारे ऊपर ये एक जिम्मेदारी है कि ऐसे समय में अगर हम आपस में प्रेममयी सेवा जागृत उत्पन्न करने का प्रयास करें, ऐसे समय जब मैनेजमेंट कथा नहीं हो रही है, जब केवल कृष्ण कथा हो रही है, इस समय जब आपस में परस्पर हम संघ को और भी गाढ़ा बनाने का, गहरा बनाने का प्रयास करें, आपस में एक दूसरे के वास्तव में सेवा करने का प्रयास करें, वास्तव में एक दूसरे को प्रभु के रूप में देखें, चाहे वो कितना भी नया भक्त क्यों ना हो और हम कितने भी सीनियर क्यों ना हो, प्रत्येक भक्त के साथ में नम्रता से, प्रेम से व्यवहार करना, अगर हम ये करेंगे तो मैनेजमेंट आसानी से हो जाएगा। हमें चाहिए प्रेम का वातावरण। हर एक जीव प्रेम का भूखा है, प्यासा है, और मैनेजमेंट में हम हैं और जितने ज्यादा हम वरिष्ठ हैं उतना ज्यादा हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है कि हम दूसरों को प्रेम के साथ में हम उनका व्यवहार करें। आश्रय, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आश्रय, आश्रय, थोड़ा दो पांच मिनट और लें। देखिए जब हम बाहर कड़ी धूप में होते हैं या एक तूफान में होते हैं और बारिश में होते हैं, हम अटक जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि कहां कुछ आश्रय मिले, भागते हैं इधर उधर। अचानक बारिश आ जाती तो सब लोग कोई छत के नीचे चले जाते हैं, क्यों? वहां आश्रय है, बारिश से हम मुक्त हो जाते हैं। तो आश्रय का क्या लक्षण होता है? आश्रय का लक्षण होता है कि वहां जाने से तुरंत हमें रिलीफ मिल जाता है। रिलीफ का क्या मतलब है? रिलीफ को क्या बोलते हैं? आराम मिल जाता है। तो अभी हम इतने तकलीफ में थे, अभी आराम मिल गया, बारिश हो गई या धूप से आ गए, कितना आराम मिल जाता है। तो वहां आराम मिलता है, वहां एक प्रकार का एक सुरक्षा की भावना मिलती है, अब मैं सुरक्षित हूं, अब कितने भी ज्यादा बारिश आए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तूफान भी आए लेकिन हम सुरक्षित हैं, है ना? तो आश्रय का ये लक्षण होता है कि हमें आराम मिलता है, हमें सुरक्षा मिलती है, हमें एक प्रकार का आनंद मिलता है। तो उसी प्रकार से हम जब भक्ति में आते हैं तो कृष्ण के चरण कमलों में हमें आश्रय मिलता है। भागवत में भी यही बताया जाता है कि जैसे एक प्रवासी धूप में, कड़े धूप में बहुत थका हुआ, प्यासा, भूखा आता है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है आश्रय में, छांव में, तो कितना आराम होता है। यही एक श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय हमें मिलता है। लेकिन ये आश्रय हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, कृष्ण तो हमारे लिए बहुत दूर हैं। कृष्ण की अनुभूति हम भक्तों के संग में ही महसूस कर सकते हैं। तो कृष्ण की अनुभूति कौन देंगे? कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय कौन देंगे? कृष्ण के प्रतिनिधि कौन है? सद्गुरु। लेकिन सद्गुरु भी हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकते, 365 दिन नहीं रह सकते, 24 घंटे नहीं रह सकते, तो वो भी 24 घंटे हमें साक्षात आश्रय नहीं दे सकते हैं। तो उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो वरिष्ठ भक्त हैं, उनको ये आश्रय देना चाहिए। अन्य जो नए भक्त आते हैं मंदिर में, वो आश्रय के भूखे हैं, प्यासे हैं, आश्रय चाहते हैं। भौतिक संसार दावल नल के से जले हुए आते हैं ये मंदिर में, हमारे प्रत्येक इस्कॉन की शाखा में सब जगह जल कर आते हैं। यहाँ पे हर एक व्यक्ति संसार में पीड़ित है, पीड़ित अवस्था में, जले हुए अवस्था में दुख से राहत प्राप्त करने के लिए, उस रस की प्राप्ति के लिए आते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उन्हें आश्रय दें। आश्रय का मतलब हमारे लिए प्रैक्टिकल दृष्टि से क्या है? प्रैक्टिकल दृष्टि से इसका मतलब है कि प्रेम देना चाहिए। हर एक व्यक्ति जो भी आए उसे इतना प्रेम देना चाहिए कि कभी यहां से वो नहीं चले जाए। और अगर उसको कोई कष्ट हो, समस्या हो, उस समाधान, उस कष्ट का, समस्या का शास्त्रों के आधार से प्रेम से समाधान हम करें। भक्ति में वो डगमगा जाए, डामाडोल हो जाए, उसे आश्वासन दिलाएं, उसे भक्ति में प्रेरणा दें। ये प्रेम को देना हमारा कर्तव्य है। और जितना ज्यादा हम वरिष्ठ हैं, उतना ही ज्यादा हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आती है। हमारा दैनिक व्यवहार में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, हम कैसे दूसरे भक्तों से बोलते हैं। एक प्रेममय शब्द बोलने से किसी का कभी नुकसान नहीं होता है। आज तक किसी का ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। प्रभु आप कैसे हैं और दो गले मिलाया, आ किसी का ऐसे नुकसान हुआ है आज तक? लेकिन हम कुछ कठोर शब्द बोलेंगे और उसे नकार देंगे तो इससे तो बुरा होगा, उसका भी बुरा होगा, हमारा भी बुरा होगा। तो जो वरिष्ठ हैं ज्यादा से ज्यादा और जो नए भी भक्त हैं, सबको देखना चाहिए कि हम कैसे दूसरों को प्रेम दें, दूसरों के प्रति सेवा की भावना रखें। भले कोई वह पहले बार भी मंदिर में आए, जप करना शुरू करे, हमें सोचना चाहिए वास्तव में हृदय में मैं इसका दास हूं, लेकिन क्योंकि मैं ये अभी नहीं जानता है, भक्ति इतना नहीं जानता है और मैं भक्ति में पहले आ चुका हूं, मुझे भगवान की कृपा से थोड़ा कुछ मालूम है, इसलिए मेरा सेवा इसके प्रति ये है कि मैं उसको थोड़ा मार्गदर्शन करूं। ये भावना से हम उपदेश देते हैं, मार्गदर्शन कराते हैं। ये मार्गदर्शन से नहीं कि मैं इससे अच्छा हूं, मैं इससे ज्यादा कुछ योग्य हूं, नहीं। तो ये दासत्व की भावना, ये प्रेम की भावना, ये हमारे अंदर रहेगा, सबके प्रति हम करेंगे। मैनेजमेंट की बात दूर है अभी, केवल साधारण हमारे दैनिक जीवन में, साधारण अगर भक्तों के संग में हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर हम साधारण से साधारण नए से नए भक्तों के साथ में ऐसे प्रेममयी सेवा कर रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, तो एक दूसरे के बीच में करना तो और भी आवश्यक है। अगर जितना हम वरिष्ठ होते हैं तो एक दूसरे को हमें आश्रय देना चाहिए, हमें भी आश्रय की जरूरत है। ऐसे नहीं कि हम केवल आश्रय देंगे और आश्रय लेंगे नहीं, हमें भी तो चाहिए आश्रय। सबसे ऊंचे आश्रय श्री कृष्ण हैं, लेकिन उनके नीचे भी होते होते परंपरा होते 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 हुए तो हमें सबको आश्रय की आवश्यकता है। इसलिए हमें एक दूसरे को आश्रय देना चाहिए, एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। और ऐसे भावना अगर हम रखेंगे तो फिर जब मैनेजमेंट की बात होती है तो फिर आसानी से प्रेम से इसको हम समाधान करा सकते हैं। इसलिए ये तो कठिन है, मुश्किल है, लेकिन ये ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो भगवान हमारी सहायता करेंगे। और हर पल हमें सोचना चाहिए कि ये वैष्णव है, ये भक्त है, ऐसे ध्यान में हमेशा रखेंगे तो भगवान हमारे मार्ग को सहज बना देंगे, थोड़ा आसान बना देंगे। भगवान भी हमारा मदद करेंगे, भगवान तो बैठे हैं मदद करने के लिए। कठिन चीज को आसान भगवान बना सकते हैं कृपा देंगे तो। भगवान कृपा देंगे तो भक्तों के संग में रहना बहुत आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं कैसे प्रेम से भक्त लोग आपस में रहते थे। इसलिए ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है चैतन्य चरितामृत। ऐसा नहीं है कि चैतन्य चरितामृत हाई स्कूल में पढ़ा जाता है, फिर भागवत कॉलेज में और गीता पोस्ट ग्रेजुएट में। उल्टा है, गीता हाई स्कूल में होता है, भागवत कॉलेज में और चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएट में। क्यों? सबसे कठिन बात है क्या है? भक्तों में रहना, भक्तों के संग में रहना, भक्तों के संग में रहकर प्रेममयी सेवा करना सबसे कठिन बात है। इसलिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है। इसलिए आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, बहुत कठिन है, लेकिन करना भी चाहिए। क्या करें, और कोई उपाय भी नहीं है। परंपरा में और शास्त्र में तो कोई अंतर नहीं है ना? परंपरा भी तो शास्त्र के ऊपर ही आधारित होता है, नहीं तो परंपरा प्रामाणिक नहीं हो सकती है। अगर हम परंपरा को ही हम स्वीकार करें तो वो काफी है। हम जब कहते हैं कि या तो परंपरा या तो शास्त्र, ये तो नहीं हो सकता। अगर हम शास्त्र को मानते हैं तो परंपरा को मानना होगा, परंपरा को मानते हैं तो शास्त्र को मानना होगा, दोनों तो को अलग नहीं किया जा सकता है। तो वो सही नहीं है, तो सही नहीं है। इसका मतलब है कि शास्त्रों के आदेश को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। हमें चाहिए व्यक्ति भागवत और पुस्तक भागवत, दोनों चीजें चाहिए, पुस्तक शास्त्र और व्यक्ति शास्त्र। अगर हम केवल पुस्तक शास्त्र को देखेंगे और व्यक्ति शास्त्र को नहीं देखेंगे तो कभी नहीं चलेगा, दोनों को साथ में लेना पड़ेगा हमें। इस प्रकार से शास्त्र को हम अपने जीवन में उतार पाएंगे, आचरण इसका कर पाएंगे। इसलिए तो आचार्य जो आचरण करते हैं, आचार्य शब्द के कई अर्थ होते हैं संस्कृत भाषा में। आचार्य शब्द का एक होता है मतलब जो आचरण करता है, दूसरा वैदिक संस्कृति में जो अध्यापक है टीचर सिखाता होगा कोई भी, उसे भी आचार्य कहते हैं। और तीसरा अर्थ है जो गुरु है, मतलब जो बहुत ऊंचे पद में रहते हैं, जिनको बहुत ही, जैसे प्रभुपाद जी हैं फाउंडर आचार्य है, तो ऐसे भी आचार्य कहा जा सकता है। तो सभी को आचार्य बनना है, लेकिन अलग अलग दृष्टि से हमें देखना है इस आचार्य शब्द को। पहले आचरण करना है तो आचार्य बनते हैं, फिर शिक्षा देना है दूसरों को, जैसे हमने शिक्षा प्राप्त किया है तब भी हम आचार्य होते हैं। तो इस प्रकार से हमें आचरण जो कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों की भी हमें आवश्यकता है, जिनका आचरण देखकर हमें भी प्रेरणा मिले और हम भी आचरण कर सकें। दोनों चीजें हमें चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, परंपरा भी चाहिए हमें। और कोई प्रश्न टीका? हाँ भक्तों के बीच में प्रेम व्यवहार कैसे बढ़ाया जाए, ये हमसे शुरू होना चाहिए। हमें ये नहीं कभी सोचना चाहिए कि दूसरे को शुरू करना चाहिए, दूसरे मेरे प्रति प्रेम करे फिर मैं बाद में प्रेम करूंगा, नहीं। अक्सर भक्त लोग ये कहते हैं कोई मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं करता है, कोई मेरे से प्रेम नहीं करता है, लेकिन इसका जवाब क्या है कि हम दूसरों को प्रेम नहीं दे रहे हैं, हम दूसरों से अच्छा जवाब सवाल जवाब में हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि, हम जैसा हम दूसरों के प्रति व्यवहार करेंगे वैसा वो हमारे साथ व्यवहार करेंगे। शुरुआत हमसे होनी चाहिए, हम दूसरों को प्रेम करेंगे, हम दूसरों के साथ में बहुत ही अच्छे ढंग से बात करेंगे, मीठे ढंग से बात करेंगे, जैसे वैष्णव संस्कृति है, जैसे वैष्णव को करना चाहिए, तो दूसरे लोग भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। ये वैष्णव संस्कृति बहुत सुंदर चीज है, ये संसार को सीखना चाहिए, हमें सबको अच्छी तरह से सीखना चाहिए, छोटी छोटी चीज भी। ऐसे वैष्णव संस्कृति जो है ये भक्त का एक आभूषण होता है, तो हमें ऐसे वैष्णव आचार, वैसे वैष्णव संस्कृति के गहनों से हमें अपने आप को आभूषित करना चाहिए, फिर कृष्ण की आंखों में हम बहुत सुंदर बन जाएंगे। संसार में सौंदर्य सोने के गहने से लोग करते हैं, लेकिन कृष्ण के दृष्टि में सौंदर्य गुणों से है, लक्षण से है, अपने संस्कृति अपने आचार विचार से है। तो हमारे लिए गहने कौन से होने चाहिए? हमारे गुण और हमारा ये जो व्यवहार है, जो संस्कृति है, कैसे हम दूसरों के प्रति से बात करते हैं, कैसे उनसे व्यवहार करते हैं, कैसे हमारे रहन सहन का ढंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत हमसे होनी चाहिए। अगर प्रत्येक हम में से सोचे कि शुरुआत हमसे होनी चाहिए, भले दूसरे हमारे साथ न करें लेकिन हमें देना चाहिए सबको, तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। अब